ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS पहल की शुरुआत की। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त 1,80,00,000 उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। इस पहल के पहले चरण के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानव विज्ञान से संबंधित 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों को शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि ONOS के बाद के चरणों में इस सुविधा का विस्तार निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए भी किया जाएगा, ताकि देश के सभी जरूरतमंद लोगों को भी ये सुलभ हो सके। ONOS योजना के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक में कल महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए कई परियोजनाओं को अनुमति दी गई। बिहार के बक्सर में नदी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समिति ने 257 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दी। इस पहल के अंतर्गत 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सहायक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 अरब क्यूबिक मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2024 में भूजल निकासी में 3 अरब क्यूबिक मीटर की कमी आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कल वर्ष 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का मूल्यांकन 446 अरब क्यूबिक मीटर से अधिक किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल के 100% नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में हैं। भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नए वर्ष 2025 का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल 2025 के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष को देश की गणतंत्र यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। नए साल में नागरिकों के शानदार स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ये साल सभी के जीवन में नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लाएगा। राजधानी दिल्ली में बिरला मंदिर और झंडे वालन सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह की आरती में शामिल होने और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मुंबई में प्रशासन ने नववर्ष के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। वहीं केरल में नृत्य, संगीत और रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ पूरे राज्य में नए साल का जश्न मनाया गया। विश्व में धूमधाम, उत्साह, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खुशी के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। सबसे पहले प्रशांत क्षेत्र के किरीबती में नववर्ष का स्वागत किया गया। नववर्ष का स्वागत समारोह अमरीकी सामोआ में सबसे आखिर में आयोजित किया गया। सिडनी से लंदन तक नववर्ष को आशा और आकांक्षा के साथ मनाया गया। रूस में आज से नया पर्यटक कर लागू हो गया। रिजॉर्ट शुल्क के स्थान पर देशभर में पर्यटक कर लगाया गया है। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्टी के अनुसार होटलों और अन्य स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों को ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त कर देना होगा। क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ये कर लगाया गया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण अनेक रेलगाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। भारतीय रेल के अनुसार दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियां 2 घंटे तक देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।